ॐ शांति। ज्ञान और योग से करे आत्म श्रृंगार। प्यारे बाबा, पालनहार बनकर हम सभी बच्चों की बहुत दिल से पालना करते हैं, इसलिए बाबा को पालन हार कहते हैं। ऐसी वो पालना देते हैं, ऐसी निस्वार्थ पालना देते हैं जो हार पहनाने के लायक पूजनीय हमें बनाते हैं। दुनिया में लौकिक माँ बाप हमें जन्म देते हैं, हमारी पालना देते हैं, फिर भी उनको पालनहार नहीं कहते हैं, क्योंकि वो स्वार्थ से हमारी पालना करते हैं। तो प्यारे बाबा, हर रोज आत्मा का श्रृंगार करने के लिए अमृत वेले योग स्नान हमें कराते हैं और शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते हैं। तत्पश्चात ज्ञान के सागर बाबा हमारा ज्ञान स्नान भी कराते हैं। ज्ञान स्नान के द्वारा अमूल्य ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार भी करते हैं। लेकिन सवेरे हमारा बाबा श्रृंगार करते हैं और जब हम अपने कर्म क्षेत्र पर जाते हैं और देहाभिमान में आते हैं तो माया हमारा श्रृंगार बिगाड़ लेती है। इसलिए मौज आत्मा का श्रृंगार कैसे बढ़ता रहे, सारे दिन भर में कैसे कायम रहें, उस पर हम थोड़ा सा विचार विमर्श करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है, ज्ञान सागर बाबा हमें ज्ञान रत्नों से माला माल ऐसी प्यारी मुरली सुनाते हैं, हम बहुत दिल से सुनते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद में मुरली के पॉइंट्स हम भूल भी जाते हैं। कोई पूछता है, आज बाबा ने मुरली में कहा क्या कहा, तो कहते हाँ मुरली तो बहुत अच्छी थी आज की, हाँ वही आत्मा समझो मुझे याद करो यही बाबा ने कहा। अब वो तो हर मुरली में कहते हैं बाबा। तो मुरली के पॉइंट्स हम भूल जाते हैं, उसका कारण क्या है? ना भूलने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना होगा? पहली बात, ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करने के लिए हमें योग युक्त होकर मुरली सुनने का अभ्यास बढ़ाना जरूरी है। दूसरी बात, जो ज्ञान के सागर बाबा हमें मुरली सुनाते हैं उसको हम बुद्धि रूपी टिफिन बॉक्स में भर भी देते हैं, लेकिन उस ज्ञान के भोजन को हमने हजम करना है। मनन चिंतन के अभ्यास के द्वारा। तो मुरली सुनते समय जो पॉइंट्स हमारे दिल को बहुत छू लेते हैं उनको पॉकेट डायरी में हमें नोट करना है, और जब भी समय मिलता है एकांत में बैठकर उस पर गहराई से मनन चिंतन करना है। कई बाबा के बच्चे मनन चिंतन करते हैं मुरली पर, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है। उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण ये है कि बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो। तो सबसे पहले बुद्धि रूपी जो मड़का हमारा है वो विचारों के सागर से भरपूर होना चाहिए। उसके लिए हम बहुत अच्छी तरह से बाबा का लिटरेचर पढ़ें, आध्यात्मिक किताबें पढ़ें और श्रेष्ठ विचारों से बुद्धि को संपन्न करें, भरपूर करें। उसके बाद एकांत में बैठकर अगर हम कोई भी टॉपिक लेते हैं या कोई भी मुरली का पॉइंट लेते हैं, उसके गहराई में जाते हैं, तो बहुत अच्छी सफलता हमें मिलती है। उसके लिए जो टॉपिक या पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं उस पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते रहें, उसका जवाब हमें मिलता जाता है, और प्रश्न पूछते रहे जवाब मिलता रहता है, और उसके कारण उस पर हमारे पास बहुत अच्छा मटेरियल जमा होता है। तो इससे हर रोज विचार सागर मंथन करते रहने से आत्मा ज्ञान रत्नों से स्वयं को भरपूर अनुभव करती है। दूसरा, ज्ञान का बल अपने पास जमा का अनुभव करती है। जैसे योग बल का गायन है वैसे ज्ञान के बल का भी गायन है। जैसे जैसे ज्ञान का बल बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम निर्भय निडर बनते जाते हैं, किसी भी बात का डर हमारे पास नहीं फटक सकता है, और ज्ञान रत्नों से हम स्वयं को माला माल अनुभव करते हैं। दूसरी बात, अमृत वेले हम बाबा से बहुत अच्छी तरह से योग लगाते हैं, और नमाज शाम के समय भी योग लगाते हैं, थोड़ी शक्तियां जमा भी करते हैं, लेकिन जितनी थोड़ी शक्तियां जमा कर लेते हैं सारे दिन भर में विभिन्न प्रकार के संकल्प हमारे मन में चलते रहते हैं, उसके द्वारा जो जमा की हुई शक्तियां है वो खर्च भी हो जाती हैं। अभी योग के द्वारा शक्तियों से हमें आत्मा का श्रृंगार अगर करना है तो हमारे पास शक्तियों का खजाना भरपूर होना जरूरी है, और उसके लिए आवश्यक है शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाने की। बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है कि अभी समय के अनुसार साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है। शक्तिशाली योगाभ्यास से बाबा से हम बहुत शक्तियां प्राप्त करते जाते हैं, और थोड़ी सी शक्तियां खर्च करते हैं, परिणाम स्वरूप हमारे पास शक्तियों का खजाना बहुत अच्छी तरह से बढ़ता जाता है। योग बल मुझ आत्मा के पास है ऐसा अनुभव ऐसा एहसास हमें होता है। कहते हैं ज्ञान से हमें युक्तियां मिलती हैं, योग से हमें शक्तियां मिलती हैं। युक्तियां और शक्तियों का जब संयोग होता है तो विकारों से मुक्ति होती है। जो आत्मा पर दाग है विकारों के, और जिसको साफ हमें करना है उससे मुक्ति मिलती है, और दिव्य गुणों की प्राप्ति हमें जीवन में होने लगती है। आत्मा का श्रृंगार करने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता होती है। जब हम चेहरे का श्रृंगार करते हैं तो चेहरे को अच्छी तरह से पहले साफ करते हैं, उसके बाद उसको मेकअप करते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो ऐसे ही आत्मा का श्रृंगार करने के लिए आत्मा में जो विकारों के अंश वंश हैं, दाग हैं, कमियां हैं, त्रुटियां हैं, खामियां हैं, उसको मिटाना होगा। उसके लिए आवश्यकता है ज्ञान और योग के शक्ति की। क्योंकि हम हर रोज ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी जब कारोबार में जब हम आते हैं तो थोड़ा सा हमें रोब आता है, कभी कभी फीलिंग भी आ जाती है। इसका मतलब विकारों के अंश अभी भी आत्मा में हैं, उनको हमें हटाना होगा। हटाने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। मुरली के द्वारा ज्ञान जो सुनते हैं, ज्ञान से हमारी महसूसता की शक्ति बढ़ती है, रियलाइजेशन पावर बढ़ता है, और योग से हमारी परिवर्तन शक्ति बढ़ती है, ट्रांसफॉर्मेशन पावर बढ़ती है। ये दोनों शक्तियां हमारे पास हर पल मौजूद होनी चाहिए, तभी हम अपनी कमियों को निकाल कर अच्छाइयों को जीवन में धारण कर सकते हैं और आत्मा का अच्छी तरह से श्रृंगार कर सकते हैं। इसलिए जितनी ज्ञान की गहराई हमारी बढ़ती जाती है, उतनी महसूसता की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। कई बार हम देखते हैं, हम सालों वर्षों तक इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं, लेकिन हमें अपनी कमी का एहसास नहीं होता है, कमी को हम महसूस नहीं करते हैं। अब जब तक कमी को महसूस नहीं करते हैं, तब तक उसको परिवर्तन करने का प्रसाद भी नहीं करते हैं। वो कमी वर्षों तक हमारे साथ चलती ही रहती है, और वो कमी हमें कमाई करने नहीं देती है, वो कमी हमारे प्रसाद में बाधा डालती रहती है। इसलिए दिन प्रतिदिन ज्ञान की गहराई के द्वारा महसूसता की शक्ति बढ़ती रहे, रियलाइजेशन पावर बढ़ती रहे। रियलाइजेशन हमें कब होता है, अपनी कमी का या अपनी अच्छाइयों का रियलाइजेशन कब होता है? मुझ आत्मा में ये कमियां हैं और ये अच्छाइयां हैं, कब पता चलता है भाई? जब ये रियल आय जो है वो खुल जाती है, पूर्णतया ओपन हो जाती है, तो आत्मा को हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं और अच्छी तरह से हमें पता चलता है ये कमियां मुझ में अभी भी हैं और ये अच्छाइयां मैंने धारण की हैं। अभी मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनता है, सर्व शक्तियों से भी संपन्न बनना है। उसके लिए कौन सी शक्तियां मुझे अपने में अभी धारण करना है, इसकी रियलाइजेशन हमें स्पष्ट होती है और उसको धारण करने का हम बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में 16 श्रृंगार आत्मा का क्या होता है ये स्पष्ट किया है। जैसे दुनिया में हर अंग का श्रृंगार करते हैं, क्यों करते हैं, भगवान ने हम आत्माओं का ज्ञान और योग से दिव्य शक्तियों से श्रृंगार संगम युग में किया था, उसकी यादगार स्थूल रूप में लोग अभी भी मना रहे हैं। तो इसलिए जो भी बातें श्रृंगार के रूप में बाबा ने मुरली में बताई हैं, भाई तिलक हमें आत्मा का सदा लगा रहे और हमारा कानों का भी श्रृंगार है, हमेशा अच्छे रतन हमें सुनते रहने हैं, आंखों का भी श्रृंगार है, भगवान का दर्शन हम सदा करते रहें, पद्मों कदमों में भी हमारी पद्मों की कमाई होती रहें। तो ये विभिन्न प्रकार का श्रृंगार बाबा ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। वो श्रृंगार हमें अभी आत्मा में भरना है, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है, जब हम देह विमान में आते हैं तो माया हमारा श्रृंगार बिगाड़ लेती है। अभी देखो, बाबा श्रृंगार करते हैं आत्माओं का और माया बिगाड़ती है और बीच में संघर्ष हमारा हम अनुभव करते हैं। इसलिए देह भान में आना अर्थात माया का आह्वान करना, ये देह 5 विकारों की और 5 तत्वों से बनी हुई प्रॉपर्टी है। जब इसका भान होता है तो माया हमारे पास स्वतः ही दुश्मन आती है और दुश्मन तो हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाता है, हमारे श्रृंगार को बिगाड़ देता है, आत्मा का तिलक मिटा देता है, सुहाग का तिलक जो है वो मिटा देता है, जो साजन बाबा ने हम सभी सजनियों को लगाया हुआ है, और श्रृंगार बिगाड़ के हमें एकदम बदसूरत बनाने का पूरा प्रयास करती है। बाबा कहते हैं मेरी जो पटरानियां हैं, मेरी जो आत्मा रूपी सजनियां हैं, वो हमेशा बहुत अच्छी तरह से सजी सजाई हुई हो तो साजन भी हमें देखकर खुश होते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है, सारे दिन भर में अपने देह के भान से हमें परे रहना है, न्यारा होकर रहना है। और उसके साथ बाबा ने कहा है, अपने देह से भी ममत्व न हो और दूसरों के देह के तरफ आकर्षण भी न हो, क्योंकि माया हम पर वार इसी रूप से करती है और हमारा श्रृंगार बिगाड़ती जाती है। तो बॉडी ने हमें कौड़ी तुल्य बनाया है और भगवान जो है हमें हीरे तुल्य बनाते हैं, हीरे जैसी चमक हम आत्माओं की वो बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हर रोज ज्ञान और योग का श्रृंगार हम अच्छी तरह से करते रहें। हम चेक करें ये जो सारी शक्तियां है उनमें से कितनी शक्तियां मुझ आत्मा में मैं अनुभव करती हूं, और जो भी दिव्य गुणों का श्रृंगार है, 36 गुण बाबा ने बताए हैं, गुणों के सागर बाबा ने, कितने दिव्य गुण मेरे जीवन में हैं और कितने दिव्य गुण मुझे धारण करने हैं आत्मा का श्रृंगार बढ़ाने के लिए, वो हमें चेक करना है। और जो गुण हम मिस करते हैं उन विशेष गुणों को धारण करने के लिए 6 मास या 1 साल का पुरुषार्थ अच्छी तरह से करते रहें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सर्व गुण संपन्न बनना। तो इसलिए कोई भी गुण मुझ आत्मा में कम न हो, ऐसी चेकिंग हम अपनी करते रहें। और जितने भी कलाएं हैं, कला किसको कहते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं वो बाबा के श्रीमत के अनुसार करते हैं, मर्यादाओं के अनुसार करते हैं, तो वो कर्म करने की कला हमारे आत्मा में स्वतः ही धारण होती है। तो केवल 16 कला नहीं है, कलाएं बहुत हैं। जितने भी हम कर्म करते हैं उनको बाबा की याद में रहकर मर्यादाओं के अनुसार हम करते रहें तो 16 कला अर्थात कलाओं की संपूर्णता भी हमारे में बढ़ती जाएगी और हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता जाएगा। क्योंकि सुंदरता के सागर बाबा हम सभी आत्माओं रूपी सजनियों को सुंदर बनाने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। तो देह अभिमान की मिट्टी से हमें थोड़ा सा न्यारा जरूर रहना है और बहुत गहराई से चेकिंग करते रहें और चेंजिंग भी करते रहें। तो दिव्य गुणों का श्रृंगार हमारे चेहरे पर बढ़ता जाएगा। जब हम श्रृंगार करके सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं तो अनेक आत्माओं को वह श्रृंगार देखने में आता है और ऐसा श्रृंगार करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो इससे श्रृंगारित स्वरूप के द्वारा हम आत्माओं की सेवा भी कर सकते हैं। अनेक आत्माओं को ऐसा श्रृंगार करने की प्रेरणा देते रहते हैं। बाबा कहते हैं अकेले अगर आप पुरुषार्थ करते हैं आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने साथ अनेक आत्माओं को पुरुषार्थ कराने के लिए प्रेरणा देते हैं और उससे बढ़कर बात है। तो अनेक आत्माओं का जो कारवा है, हम आत्माओं के साथ अगर चलता है, अनेक आत्माओं को हम श्रेष्ठ बनाने का जीवन के लिए प्रेरणा देते हैं तो अनेक आत्माओं की दुआएं हमें मिलती जाती हैं और दुआओं का खजाना हमारे पास बढ़ता ही जाता है। मुझे याद है 76 में हम सेवाधारी के रूप में मधुबन में आए थे और 60 सेवाधारी बाबा से मेडिटेशन में हॉल में मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा था कि मधुबन में आप सेवा करते हो लेकिन अभी समय की पुकार है, एक ही साथ एक सेवा नहीं करना है लेकिन एक ही साथ ट्रिपल सेवा करना है, 3 गुना सेवा करना है। अब हम सोचने लगे 3 प्रकार की सेवा कौन सी करें यहां, क्योंकि मनसा सेवा के द्वारा शक्तिशाली संकल्पों के द्वारा वाइब्रेशन फैला सकते हैं और कर्मणा के द्वारा कर्मणा सेवा कर सकते हैं कर्मी इंद्रियों के द्वारा। अब 3रा प्रकार कौन सा है, किसी को यहां ज्ञान तो नहीं दे सकते, सभी बाबा के बच्चे ज्ञानी यहां बैठे हैं। तो बाबा ने कहा था अपने दिव्य गुणों के श्रृंगार किए हुए चेहरे से अन्य आत्माओं को दिव्य गुणों का दान करते रहो, ताकि वो भी आत्माएं अपना श्रृंगार दिव्य गुणों से करते रहें। तो दिव्य गुणों का दान करना ये भी बहुत अच्छी गुप्त सेवा है, ये महान आत्माएं ही कर सकते हैं। साधारण दुनिया की आत्माएं साधारण आत्माएं होती हैं, वो साधारण चीजों का दान करती हैं, रोटी कपड़ा मकान जो भी है, लेकिन हम बाबा के बच्चे महान आत्माएं हैं, तो महान आत्माएं महान चीजों का दान करते हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता दिव्य गुण हैं, शक्तियां हैं, ज्ञान रतन है, इन महान चीजों का दान हमें करते रहना है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास ये खजाने श्रृंगार के रूप में भरपूर होगा, तभी हम अनेक आत्माओं को बांट सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि बाबा जो सुंदरता का सागर हैं, वो हम आत्माओं को जो सुंदर बनाने आए हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले अशरीरी स्थिति में स्थित होकर आत्मा रूपी सजनी अनुभव करते जाना है। इस देह रूपी अमूल्य डिब्बे में मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा विराजमान हूं, बेदाग हीरा विराजमान हूं। कोई ऐसा दाग जो मेरी वैल्यू को घटाता है, वो दाग भी मुझे घर वापस जाने के पहले मिटाना है। उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी होगी, मैं करके रहूंगी। तो उसके लिए हमें ज्ञान और योग की बहुत गहराई से साधना बढ़ाते रहना जरूरी है। तो ये दोनों बल हमारे पास बढ़ते रहें, क्योंकि बाबा हमें इस यूनिवर्सिटी में चार सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ज्ञान योग धारणा और सेवा। ज्ञान और योग के संयोग से धारणा गुणों की हमारी होती है, शक्तियों की होती है। धारणा जितना हमारे जीवन में बढ़ती जाती है, उतना हमारा जीवन सेवा करता रहता है। जीवन चलन और चेहरे के द्वारा ऑटोमेटिक सेवा होती रहती है। मुख नहीं बोलता है, हमारा चलन और चेहरा बोलने लगता है, क्योंकि अभी आत्माएं ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं और सुन सुन कर थक चुके हैं। वो ज्ञान हमें अपने जीवन में धारण किया हुआ देखना चाहते हैं। अगर वो श्रृंगार धारणा के रूप में हमारे जीवन में नहीं होगा, तो क्या होगा? धार प्लस ना, हमारे ज्ञान रूपी तलवार पर धार नहीं होगी। और हम जो ज्ञान लोगों को सुनाएंगे, सुनने वालों के दिल पर उसका कोई असर नहीं होगा। वो कहेंगे ये तो कोरा पंडित बैठा है, ज्ञान सुनाता रहता है, इसके जीवन में कुछ है ही नहीं। तो हमें पहले धारणा की मूर्ति बननी होगी, पहले आत्मा का श्रृंगार करना होगा, उसके बाद हमारे जीवन के द्वारा सेवा होती रहती है। इसलिए चारों सब्जेक्ट उसमें कवर हो जाते हैं और चारों सब्जेक्ट में जो संपन्न होते हैं वही लक्ष्मी नारायण के राज में श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। तो किसी का दिल नहीं चाहता है राम सीता जैसा हम बने, हर कोई चाहता है हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। क्यों भाई? हाँ जी, दोनों महान आत्माएं, दोनों का बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार है, दिव्य गुणों से, शक्तियों से, दिव्यता से भरपूर हैं, लेकिन कोई भी राम सीता बनना नहीं चाहता है, लक्ष्मी नारायण जैसे श्रेष्ठ जीवन बनाना चाहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं होती हैं वो चारों सब्जेक्ट में फुल पास होते हैं, और राम सीता जैसे बनने वाली आत्माएं होती हैं वो संगम में बहुत सेवा करते हैं, बहुत अपनी प्रजा बनाते हैं, लेकिन श्रृंगार भी करते हैं, लेकिन माया जित, प्रकृति जित नहीं बन पाते हैं पूर्णतया, इसलिए माया से संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए उनको धनुष्य बाण की निशानी दिखाते हैं। तो हमें लक्ष्मी नारायण के राज में अच्छे श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करने के लिए बहुत सुंदर स्वयं को ज्ञान और योग के श्रृंगार से श्रृंगार करना होगा, और जैसी आत्मा सुंदर बनती जाती है हमें बहुत एक अजीब सी खुशी होती है और बाबा के समीपता की निशानी अनुभूति हमें होती है, क्योंकि सुंदरता के सागर बाबा के पास जितनी आत्मा सुंदर बनती जाती है समीपता की अनुभूति करती रहती है। तो इसके लिए हमें हर रोज इस ज्ञान और योग के अभ्यास को गहराई से बढ़ाते जाना है। संपूर्ण ज्ञानी बनना अर्थात निरंतर योगी बनना। जो भी बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं किसलिए सुनाते हैं? ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए और निरंतर बाबा की याद में स्थित रहने के लिए और माया दुश्मन से सदा सेफ रहने के लिए हमें ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए हमें संपूर्ण ज्ञानी भी बनना है। गायन शास्त्रों में है, चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। ये गायन किसका है? हम आत्माओं रूपी चिड़ियों ने ज्ञान सागर को हप कर लिया, अर्थात ज्ञान सागर को अपने जीवन में पूर्णतया जो दिए हुए ज्ञान को धारण किया, अपने में समाया, संपूर्ण ज्ञानी स्वयं को अनुभव कर किया। तो संपूर्ण ज्ञानी भी बनना है और योगी जीवन, श्रेष्ठ जीवन भी हमें बनाना है, क्योंकि जो श्रृंगार की हुई आत्माओं की भी कंपटीशन होगी, जिनका बहुत अच्छी तरह से 16 श्रृंगार होगा, उनका नंबर इस रेस में, इस यूनिवर्सिटी में आगे ही आगे होगा, और वही नंबर लेंगे, प्राइज विनर होंगे। इसलिए हमें समय के इशारे को समझना है, बाबा के इशारे को भी समझना है, और ये जो हम प्रसाद कर रहे हैं इस प्रसाद में तीव्रता जरूर लानी है। आप सभी को बाबा ने इस श्रेष्ठ भूमि पर आकर योग की तपस्या करने का गोल्डन चांस दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ आने से बाबा आपको बहुत सुंदर गहन अलौकिक अनुभव कराते हैं और वो अलौकिक अनुभव आपके पुरुषार्थ की तीव्रता को और तेज करते हैं। जो अलौकिक अनुभव यहाँ होते हैं वो आप अपने कर्म क्षेत्र पर जाकर करते रहेंगे तो पुरुषार्थ की जो रफ्तार है वो और तेज अनुभव करते जाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान देना है पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्रता से आगे बढ़ती रहे और उसके लिए एक सिन हमेशा सामने रखें। कभी भी अलबेलापन इस ज्ञान और योग के श्रृंगार करने में न आवे उसके लिए एक दर्श हमेशा सामने रखना है। कौन सा दर्श? हम सभी आत्माओं रूपी घोड़े इस आध्यात्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं। भगवान की मेहरबानी मुझ आत्मा पर हुई है, उन्होंने मुझे भी इस रेस में दौड़ने का चांस दिया है। तो इस रेस में मुझे केवल दौड़ना ही नहीं है लेकिन मुझे प्राइज विनर बनना है। ये लक्ष्य अगर आप रखेंगे तो कभी भी आपके पुरुषार्थ में शिथिलता नहीं आएगी, तीव्रता से सदा आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति।